तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञान का सिर स्वरूप सिरकार नमः प्रयोग समान के। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा हो चुकी है। दोनों एक साथ पैदा होते हैं, दोनों के लिए एक एक ही प्रकार का पुरुषार्थ करना पड़ता है। और अंतिम पंक्ति थी जो अपन पढ़ रहे थे चौथी ढाल की नौवां छंद की, कि लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ तो सकल जग दंड फंद निज आत्म जाओ। इसकी चर्चा में अपन ने ये बात कही थी कि आत्मा के ध्यान करने के लिए जगत के सारे दंड फंद छोड़ना पड़ेंगे। और दंड फंद का अर्थ यही नहीं है कि जो आप धंधे पानी में करते हैं, गृहस्थी के काम में करते हैं, राजनीति में करते हैं। ये कहते हैं कि आत्मा के ध्यान के अलावा ये जो हम आप कर रहे हैं ये भी दंड फंद ही है, समझे ना। शारीरिक बंधन को बोलते हैं फंद, और मानसिक द्वंद को बोलते हैं, मानसिक जो होता है संकल्प विकल्प उनको बोलते हैं द्वंद। ये द्वंद फंद है तो दंड फंद हो गया है, क्योंकि आत्मा का कल्याण तो आत्मा के जानने में और उसके ध्यान में ही है। ये तो बाकी सब प्रपंच है। अब इसके बाद वो ये कहते हैं कि सम्यक ज्ञानी होए बहुर दृढ़ चारित्र लीजे। सम्यक ज्ञानी होने के बाद हमको दृढ़ चारित्र लीजे की तो भाषा है, चारित्र होता है। वास्तव में स्थिति तो ये है कि जब सम्मा दर्शन ज्ञान हो जाते हैं और पांचवें मन स्थान में कोई जीव जाता है तो उसके ऐसे परिणाम होते हैं। लेकिन चरणान योग की शैली चाहिए की है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। वास्तव में तो अंदर में ऐसी दशा हो तो ऐसा होता है। बहुत संक्षेप में इन्होंने 12 व्रतों की चर्चा की है। मैं भी ज्यादा लंबाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे 12 भावना की चर्चा भी याद करनी है। देखिए, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कही रे त्रिस हिंसा को त्याग। माने एक देश चारित्र और सकल देश चारित्र। पांचवें गुण स्थान में एक देश चारित्र और छठवें सातवें गुण स्थान में सकल चारित्र होता है। अभी कोई आदमी कहे कि मैं ये 12 व्रत जिनका वर्णन हो रहा है अभी मैं अभी पालन करने लग जाऊं तो क्या मेरा पांचवां गुण स्थान हो जाएगा? यदि मैं मुनि धर्म के 28 गुणों का पालन करने लग जाऊं तो क्या मेरा छठवां सातवां गुण स्थान हो जाएगा? नहीं, क्योंकि पहले मिथ्यात्व तो जाता है और उसके साथ अनंतानबंदी कसाई जाती है, तब सम्मा दर्शन होता है। जब ये चली जाए तो उसके बाद अप्रत्याखाना बन जाता है। अप्रत्याखाना बन जाएगा तो पंचम गुण स्थान होगा, और उसके बाद प्रत्याखाना बन कसाई जाती है तब छठवां सातवां गुण स्थान मुनिराज की अवस्था होती है। ख्याल में है ना? तो इनका एक क्रम है। ऐसा नहीं कि हम अप्रत्याखाना बन को पहले खत्म कर दें, प्रत्याखाना बन को पहले खत्म कर दें, संतुलन को पहले खत्म कर दें और मिथ्यात्व और अनंतानबंदी कसाय बनी रहे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो ऐसा जो किसी ने कोई शर्त नहीं लगा दी कि सम्यक ज्ञानी हुए बहुत दृढ़ चारित्र लीजिए, वास्तव में स्थिति ऐसी है कि उसके बिना ये संभव ही नहीं है। अब वो संक्षेप में वर्णन करते हैं बाहर का, त्रिस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे। ये तंत्र गुण स्थान वाला जो जीव है वो त्रिस हिंसा का तो पूरी तरह से त्यागी होता है, लेकिन पांच जो स्थावर की ही है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, अब ये ऐसी चीजें हैं कि हम बिना सांस लिए तो नहीं ले रह सकते हैं सांस लिए। अब हम वायु काय के जीवों की को तकलीफ तो होती ही है ना, है ना? ऐसे ही हम पानी पीने के बिना तो हमारा नहीं चल सकता है। पानी तो मुनिराज भी पीते हैं, गृहस्थ नहाने धोने, तो जल को भी तकलीफ तो पहुंचेगी ना, पृथ्वी पे रहते हैं, मकान बनाते हैं, उसके साथ और जो छेड़खानी हम करते हैं, वृक्षों की जो सब्जियां हैं उन्हें हम लेते हैं, तो ये जो चीजें हैं स्थावर की, तो स्थावर की हिंसा हमारे जीवन में ऐसा लगता है जैसे अनिवार्य हो। मुनिराज भी ये सब चीजें लेते हैं, जल भी भोजन भी, लेकिन वे खुद नहीं करते, ख्याल में है ना। लेकिन गृहस्थ को तो कौन देगा, और उसकी जिम्मेवारी भी है कि वो अपनी अपनी चिंता स्वयं करे, और मुनिराजों की नहीं करे, वो भी अपने दूसरे पर डिपेंड हो जाएगा, तो ये तो अन्याय की बात है ना। तो वो कहते हैं कि इन पांच चीजों के बारे में वृथा ना संहारे, यानी व्यर्थ में ही अनाप शनाप इसका प्रयोग नहीं करे। एक बाल्टी से नहाया जा सकता है तो एक बाल्टी से छनी हुई बाल्टी से शांति से नहा ले, दस बाल्टी ढोलने की जरूरत नहीं है। ऊपर से नल खोल दिया और घंटों तक बह रहा है पानी, ये करना अच्छा नहीं है। ऐसे ही जमीन पर अग्नि को जितना कम से कम हम उसका तकलीफ हो ऐसे ऐसे अपना काम चला सकते हैं, वो हमें चलाना चाहिए। हवा है, हवा के संदर्भ में भी ऐसा ही है। देखो ये पंखे चलाते हैं अपन, तो एक पंखे में हवा को तो कितनी तकलीफ होती है वो तो अलग बात है, क्यों 30 जीव भी बीच में आ जाए तो सब साफ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। कभी कभी चिड़िया वगैरह आ जाती है तो उसकी क्या हालत होती है ना। तो इसलिए कहते हैं वृथा थावर न संहारे, अब अपने विवेक से निर्णय करना पड़ेगा। ऐसा कहो चाहे ऐसा कहो कि जब पंचम गुण स्थान वाला होगा तो नियम से उसके ऐसी वृत्ति होगी ही नहीं, ख्याल में है ना। अब ये अहिंसान वृत्ति की बात हुई, देखो एक लाइन में कह दी इन्होंने, चाहे तो इन्हें घंटों व्याख्यान किया जा सकता है। यानी छेडाला कहते ना गागर में सागर है। कल हम विद्यानंद जी महाराज के पास गए थे तो उन्होंने एक बात कही, अजय प्रसाद जी थे उस वक्त, कि ये गागर में सागर है मैं नहीं मानता, ये तो सरसों के दाने में सुई से बारीक छेद करो और उसमें सारे आगम को भर दिया है ऐसा है। गागर तो बहुत बड़ी होती है, गागर तो बहुत बड़ी होती है। छेडाला का इतने गीत उन्होंने गाए, वो बहुत बहुत अनुमोदना की कि भाई आप जो सिविल लगा रहे हो बहुत अच्छा है काम, ये बढ़िया काम है। तो एक लाइन में त्रिहिंसा स्थावर हिंसा के बारे में हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, तो संक्षेप व्यथा थावर में समान है। त्रिहिंसा का त्याग, ऐसा नहीं चलेगा कि त्रिहिंसा में भी व्यथा नहीं करेंगे, काम की करें, काम की कोई सवाल ही नहीं है। त्रिहिंसा का तो कोई सवाल ही नहीं है, ख्याल में है ना। अब परत बधकार कठोर निंद नहीं बयन उचारे, अब इसमें भी हम क्या कहते हैं, झूठ नहीं बोलना वो सत्यानुवृत्त है, कि कम झूठ बोलना, स्थूल झूठ नहीं बोलना, आता ना स्थूल मलि कम न बदती, शास्त्र में भी आता है। लेकिन इसमें बहुत मार्मिक शब्द डाला परबधकार, भले ही वो सत्य हो लेकिन जिससे दूसरे के चित्त को तकलीफ पहुंचे, दूसरे की हिंसा का प्रसंग बने। बध माने गेरा माल जान से ही मारना नहीं होता है, पीटना भी है ना, दूसरे को तकलीफ पहुंचा, ऐसे वचन नहीं बोले। कहता ना सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्य बोलो और प्रिय बोलो, और सत्य भी हो कठोर तो मत बोलो, अप्रिय सत्य भी मत बोलो। क्या यदि तुम ऐसी प्रणति करेगा तो नगोद में जाएगा, नगोद में जाएगा। अब बार बार उसको ऐसा बोले तो फिर बात तो सत्य है कि संबंध की प्राप्ति नहीं करेगा, मिथ्यात्व का सेवन करेगा, क्यों तो यही होगा ना, एवं परिवर्तन पूरे करे, वहीं जाना है। कुंदकुंदाचार्य के एक बात कहता है अष्टावक्र में बहुत मारने, कि जो जीव ऐसा करेंगे मानी मिथ्यात्व का सेवन करेंगे, वे गूंगे और लंगड़े, लंगड़े और लूले होंगे। लंगले और डूले होंगे, माने क्या अपन समझते हैं बाजार में भीख मांगने वाले होते हैं ना, पैर से चल नहीं सकते उन्हें लंगड़ा बोलते हैं, और जो हाथ नहीं होते, हाथ से काम नहीं कर सकते उसे लूला बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते, तो हम समझते ऐसे आदमी हो जाएंगे ऐसा कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे वो, उसका अर्थ है वो पेड़ होंगे कि ना वे चल सकेंगे, इसलिए तो हो गए क्या लंगड़े, और ना हाथ पैर अपने काम से हिला सकेंगे इसलिए वे हो गए लूले, और पेड़ भी नहीं, पेड़ में वो निगो दिया वाला वनस्पति में होगी, तो वो ऐसा कह करके उसको बहुत नम्र शब्दों में ये बात कह देते हैं, ख्याल में है ना, क्यों, क्योंकि वो लिखा था कल बताया था ना कि वो जल होंगे, पृथ्वी होंगे, अग्नि होंगे, ऐसा नहीं लिखा, वो वनस्पति होंगे, और वनस्पति भी कौन साधारण वनस्पति होंगे, क्योंकि तब निगोद से निकले थे ना, और निगोद में पहुंचेंगे तब तो चक्कर पूरा होगा कि नहीं होगा, तो वो कहते हैं कि कठोर से कठोर बात को वे बहुत मीठी भाषा में हमको बोलना चाहिए कि भैया ऐसा, अपन लोग में भी कहते हैं ना काने को काना कहे तो एकदम आवे टूट, और धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी छूट। देखो वास्तव में किसी की आंख चली जाए तो बड़ा तकलीफ का दुर्भाग्य का काम है ना, तो आप उसे काना कह के चिढ़ाए तो उसे गुस्सा आएगा ही ना, लेकिन वास्तव में आपके हृदय में सहानुभूति हो उसके प्रति, आपका हृदय अंदर से करुणा से भर आया हो, और सच्चे दिल से आप उसकी चर्चा उससे करें, ख्याल में आए ना कि ऐसा क्या हो गया था, आप तुमने इलाज नहीं कराया, ये हुआ वो हुआ क्यों, तो वो बहुत प्रेम से आपको उसका जवाब देगा। तो आपने इनडायरेक्ट वे में यही कह दिया ना कि आपके एक आंख नहीं आप काने हैं, कह दिया ना, तो वो कहते हैं न गुरुआ सत्यम अप्रियम, सत्य भी और अप्रिय मत, इस पर उन्होंने ज्यादा वजन वजन दिया, पर अधिकार कठोर निंद नहीं, कठोर वचन नहीं बोले, निंदनीय वचन नहीं बोले, अकेला झूठे ही नहीं बोले, इतने से काम नहीं है। अभी आएगी मुनियों की भाषा समिति, उसमें लिखा हित मित्र और प्रिय वचन बोले, अब उसमें सत्य की तो बात ही नहीं है, सत्य तो महाव्रत में आ गया, भाषा समिति में क्या हितकारी बोले, बहुत लिमिटेड बोले, बोलते ही रहे और वो भी प्रिय बोले, प्रिय संबोधनों के द्वारा संबोधित करे, है ना, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती बोलते रहते उससे लोग घबराने लगते हैं, उसे बात करने से घबराने लगते हैं, अरे मतलब की बात कौन, जब तक वो बात समझ में नहीं आई है ऐसे। अब देखिए जल मृतकावन और ना ही कछु गहे अदत्ता, अभी उन्होंने ये सब शास्त्रों में तो आता ही है, लेकिन कितने कि जल और मिट्टी ये दो चीज आप बिना मांगे ले सकते हो किसी चीज की, अभी बात उस वक्त की है कि कुएं से पानी ले सकते हो ये मतलब है, और जंगल की खदान से मिट्टी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने घर में पानी लाके रखा और आप वो ले जाओ, क्योंकि पानी तो हम बिना उसके ले सकते, ऐसा नहीं है, समझ गए ना, किसे पूछे थे कि कुएं का जो मालिक तो कोई ना कोई है, उसे पूछने जाएंगे भैया एक लोटा पानी हम निकाल के पी लें क्या, वो कोई आपको रोकने वाला नहीं है, लेकिन हमने अभी 10 रुपए की एक बोतल खरीदी क्या, अब वो तो कीमती हो गई ना, आप उठा करके ले जाए तो चलेगा क्या, तो उसको उसी संदर्भ में समझना पड़ेगा, है ना, और मिट्टी हम खोद के लाए अपने घर पर हमने रखी किसी काम के लिए, तो वहां खोदना और लाना वो तो कीमती हो गई ना, कहने का मतलब बिना कीमत की, और कोई चीज भी बिना दिए नहीं ले, तो मुनिराज जल और मिट्टी भी बिना दिए नहीं लेते हैं, पानी तो जो खाना आहार लेते हैं तभी पीते हैं तो साथ में है ही, एक कमंडल का भी पानी है ना वो ग्रस्त ही देता है, ऐसा नहीं कि वो कहीं से भी भर लें, है ना, तो अत्यंत संक्षेप में उन्होंने ये बात नहीं, चोरी की बहुत बातें हो सकती थी कि नहीं, सेल टैक्स की चोरी नहीं करे, इनकम टैक्स की चोरी नहीं करे, कितनी चोरी, आजकल इसके बिना तो चलता ही नहीं, उसके बिना तो चलता ही नहीं, लेकिन साहब ये अनुवृत्तियों की बात चल रही, सम्मा दर्शन पहले हो जाए फिर जो अनुवृत्ति ले लें उसके लिए ये सारी चीजें हैं, और इसका मतलब ये नहीं बाकी के लोग कर सकते हैं, लेकिन निरतिचार इनके ही होगा, नहीं तो बाकी के दोष लगेंगे ही। और निर्बनता को है ना, सकल नारी सो रहे विरक्ता, अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी नारियों से विरक्त रहे, माने राग भाव से उनकी तरफ ना देखे। और अब देखिए उस परिग्रह की बात आई ना, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे, इसमें भी आप पर ही छोड़ दिया है कि कितना परिग्रह आपको रखना, परिग्रह परिमाण कितना, शास्त्र में नहीं लिखा कि इतना रखना, आप अपने हिसाब से विचार करो। वो परिग्रह परिमाण में आप 1,00,000 रुपए भी रख सकते हो, 10,000 भी रख सकते हो, 25,00,000 भी रख सकते हो। आप कहोगे तो प्रधान अन्याय है, तो 25,00,000 रख लीजिए फिर क्या मतलब उसका लेने का, क्यों? अरे दुनिया में 25,00,000 नहीं है, अरबों होते हैं ना, चक्रवर्ती की संपदा होती है ना, तो तूने कितनी छोड़ी उसकी कल्पना कर। ऐसे भी 25,00,000 रखोगे तो लोग हंसेंगे, है ना, लेकिन आज से 10-20 वर्ष पहले यदि 25,00,000 कोई लगता तो हंसते, और आज ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि 25,00,000 में ही दिक्कत होने लग गई है। मेरे ऐसे मैंने बहुत साथियों को देखा है कि जिनने 10-15 वर्ष पहले रिटायरमेंट ले लिया और उन्होंने अपने 2-4,00,000-5,00,000 की व्यवस्था कर ली कि इसका इतना ब्याज आएगा तो इससे मेरा खर्चा चलता रहेगा, इसलिए मैं दादा के चक्कर में क्यों पढ़ूं। मैं नाम बता सकता हूं लेकिन बताने की जरूरत नहीं है, है नहीं ना। और अब महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी और ब्याज की दर इतनी तेजी से घटी कि वे सब संकट में आ गए, क्यों आ गए ना, ये संकट क्यों खड़ा हुआ। पद्म प्रसाद जी बहुत मार्मिक बात में आपको बताता हूं, अपने यहां परिग्रह परिमाण के लिए रुपए की बात नहीं लिखी कहीं कि रुपए में करो, ये लिखा है कि इतना आटा इतना गेहूं, यहां तक कि लिखा कि इतनी गायें इतनी भैंसें, इतने खेत इतना मकान इतनी सवारी, यहां तक लिखा है, माने आप खेत भी रख सकते परिग्रह परिमाण वित्त में, इतना क्षेत्र इतना वास्तु मकान, क्योंकि ये चीजें चाहे भाव इनका चार्ज ना बढ़ जाए लेकिन हमारे जीवन के लिए जरूरी है ना। आप अनुवृत्ति है ना, तो अनुवृत्ति शादी कर सकता है कि नहीं, तो शादी करेगा कि नहीं, फिर बाल बच्चे होंगे कि नहीं, तो उन्हें पढ़ाएगा लिखाएगा कि नहीं, क्यों तो 25,00,000 ज्यादा होते हैं आज। अब लेकिन बस चदरा ओढ़ करके और समाज के ऊपर सारा बोझा छोड़ना हो तो 10,000 ही बहुत होते हैं, क्योंकि जिस समाज में जाएगी वो खिलाएगी, कहीं जाना होगी तो वो टिकट ला के देगी, अब हमें क्या करना। लेकिन अनुवृत्त समाज के ऊपर अपने को छोड़ने का नाम नहीं है, समझ रहे हैं ना आपके, तो जो इसलिए उन्होंने आप पर छोड़ा और वस्तुएं रखी कि आप परिग्रह परिमाण वृत्त करो, तो परिग्रह परिमाण वृत्त में वस्तुओं को रखो, रुपए की तो कीमत घटती बढ़ती रहती है और आवश्यकता हमें रुपए की नहीं है, हमें वस्तुओं की है। आज मैं एक कुर्ता पहनता हूं, जब मैंने मान लो लिया कि मैं 4 कुर्ता रखूंगा या रुपया रख लिए तो तब आता था 100 रुपए में बनता था, अब 100 रुपए से ज्यादा सिलाई लगती है, क्यों। मकान तब 10,000 का था, अब वही 10,00,000 का हो गया, अब वो तोड़ दो तो 20,00,000 की हो जाती है जमीन, अब क्या करें, बोले तुम्हारे पास 20,00,000 की तो जमीन है, तुम्हारा परिग्रह प्रमाण वित्त कैसा था, बोलिए क्या करें। मैंने 39 वर्ष पहले 5,000 में एक जमीन लेके डाल दी थी, 5,000 में, और उसमें झगड़े झगड़े पड़ते रहे, आज तक लिखी नहीं, और आज वो 25-30 लाख की हो गई, क्या करें बोलो। मैं उसे 5,000 मानू कि 25 लाख 25 लाख मानू, जिस घर में आप रह रहे, तो इसलिए कहते हैं अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखो, थोड़ा रखो, तो आपको थोड़ा, थोड़े का मतलब आप अपने हिसाब से नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने जो त्यागा वो तो चक्रवर्ती की संपदा त्यागी है। हमारे मन में तो सबको रखने का भाव था ना, बहुत बड़ा त्याग हुआ है। यदि आपने 15-25 लाख भी रखे तो कोई बड़ी बात नहीं, मैंने 15-25 लाख की सामग्री रखी। ये जो मेरा मकान है, इसके 2 कमरे हैं, मैं इसमें ही रहूंगा सारी जिंदगी। अब वो 25 लाख से 50 लाख का हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अभी तीन गुणवृत्त और 4 शिक्षावृत्त और हैं, बहुत मार्मिक हैं। वो क्या कहते हैं, देखो हिंसा सबसे बड़ा पाप है, तो झूठ में, चोरी में, विषय सेवन में, परिग्रह में, इनमें सब हिंसा होती है, इसलिए इन्हें त्याग करना। अब वो कहते हैं कि हमारी मर्यादा ले ली, अब इससे ज्यादा तो हम त्याग नहीं कर सकते। तो आचार्यों ने इतनी बढ़िया तरकीब निकाली कि ठीक है, तुम ये 5 पाप इससे ज्यादा नहीं छोड़ सकते या नहीं छोड़ सकते, तो अब तुम ये नियम ले लो कि सारी जिंदगी में हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाऊंगा। कि इससे क्या होगा कि हिंदुस्तान के बाहर ना तुम हिंसा कर पाओगे, ना झूठ बोल पाओगे, ना वहां चोरी कर पाओगे, ना किसी की माँ बहन को छेड़ोगे और ना परिग्रह जोड़ सकते। यदि तुम्हें जितना रखना है उतना रख लिया ना, लेकिन एक सीमा बनाओ जीवन भर की, उसे बोलते दिग्विजय। सारी जिंदगी मैं इस एरिया से बाहर नहीं जाऊंगा। जब सारी जिंदगी की बात करते हैं तो वो कहता है हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा। मेरे भाई तो बहुत बड़ी होगी साहब, इतने इतने से थोड़ी कम करो। तो नहीं, कम नहीं कर सकता साहब, हिंदुस्तान के तो किसी भी कोने में मुझे जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, 1 बरस तो चलो, 1 बरस कहां तक नहीं जाओगे। माने अब अपन ने काल की मर्यादा ले आए तो वो कहता मैं राजस्थान के बाहर नहीं जाऊंगा, दिल्ली के बाहर नहीं जाऊंगा। 1 बरस तक तो के लिए अपन कह सकते कि नहीं, चलिए दिल्ली तो बहुत बड़ी है, राजस्थान तो बहुत बड़ा है, और कुछ कम करो कि नहीं जाऊंगे। तुम कम करो तो मैं कम करूंगा। तुम क्या कम करोगे कि 1 महीना की बात मत करो, 1 बरस की मत करो। तुम ये बोलोगे 1 हफ्ता तक कहां नहीं जाऊंगा, तो मैं अभी हाल कह देता हूं कि मैं ये कौन सा है सूरजमल बिहार के बाहर नहीं जाऊंगा। कि नहीं नहीं सूरजमल बिहार तो बहुत बड़ा है। और कम करोगे, तुम कम करो कि 1 दिन घर से ही बाहर नहीं निकलूंगा, मंदिर के बाहर नहीं निकलूंगा, आज उपवास किया नहीं रहूंगा। बोलो क्या करते, 1 घंटा कहीं यहां से हिलूंगा ही नहीं। तो ज्यो ज्यो काल कम करो क्यों तो मर्यादा छोटी करते जाते हैं, उसको बोलते देश रत्न। इससे क्या फायदा, क्योंकि वो जीवन भर के लिए कर नहीं सकता था, वही फायदा जो जीवन भर के लिए वो होता ना, वहां हिंसा नहीं कर सकूंगा, तो वही फायदा कि मैं मंदिर के बाहर नहीं जाऊंगा तो मंदिर बाहर के हिंसा झूठ चोरी कुछ परिग्रह से मैं बच गया। तो वो अहिंसा वृत्त की वृद्धि के लिए ही ये बात उन्होंने अपनाई कि अब और मर्यादा कम नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते, अब घर के बाहर नहीं जाऊंगा, और क्या करूंगा, अब क्या करो, अब क्या चाहते हो। कि ठीक है, कोई बात नहीं है, देखिए देश में अब अनर्थ दंड वृत्त, अनर्थ दंड वृत्त कहते भैया तुम जितने में रहो जितनी तुम्हें मर्यादा के लिए, लेकिन वहां पर कोई बिना मतलब के पाप मत करो। दंड माने होता है पाप, हिंसा, और अर्थ माने होता है प्रयोजन से, अनर्थ माने बिना प्रयोजन के, और उस बिना प्रयोजन की हिंसा देख का त्याग, उसका नाम है अनंत दंड वृत्त। तो वो क्या है, तो उन्होंने कहा पापोपदेश, दुष्टि, हिंसा दान, ऐसी बातें वहां बैठे बैठे गप्पे लगा रहे कुछ भी, कि इसमें क्या रखा है धंधा, धंधा तुम ऐसा करो, उसमें ऐसा होता है, उसमें ऐसा होता है, क्या है? तुम पाप का उपदेश दे रहे हैं, और एक मैं तो सबको बांट दिया है, क्या कि एक सरोता बांट दिया, मैंने चाकू दे दिया, क्या करेगा वो चाकू से, हिंसा का उपकरण दिया, देना है तो समय सार देना, किसी को देना है तो ज्ञान का उपकरण देना। लेकिन सच्ची बात बोलो, अपन जब कोई शादी विवाह कुछ भी होता है तो किसी को देते हैं, मेहमानों को, अथवा अपन गीत वीत गवाते हैं तो देते हैं, तो क्या देते हैं, कटोरा स्टील की, क्या काम आएंगे वो, क्यों? जूता चप्पल क्या काम आएंगे वो? टीकदान क्या काम आएंगे वो? तेरी दी हुई चीज पे 24 घंटा थूका जाएगा। अरे ऐसी चीज देना कि जिसकी सदा तूने मंदिर में मूर्ति दी तो सब लोग उसको पूजा ही करेंगे, आगे और क्या करेंगे? समय शास्त्र दिया तो उसको पढ़ेंगे ना। तो हिंसा क्या, कैसी चीज देना, हमें इसमें भी विवेक रखना चाहिए। श्रृंगार सामग्री दी आपने तो भाई वो तो अपने आप खरीदेगा जिसको करना होगा। कपड़े लत्ते दिए तो वो तो अपने आप खरीदेगा। ऐसी चीज दो कि यदि तुम नहीं दोगे तो वो गारंटी से खरीदेगा नहीं। मैं राजीव प्रसाद जी आप 100 समय सार लेकर के अपने हाथ से बांटो, कि पंडित जी पैसा मेरे से ले लो लेकिन बांटने का काम मेरे से नहीं हो सकता। एक काम मेरे नहीं, नहीं ये नहीं चलेगा, बांटना तो आपको पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जिन तक आप पहुंचोगे उन लोगों तक हम पहुंच ही नहीं सकते। हमारे वे स्व पहचान वाले अलग हैं और तुम्हारे स्व पहचान वाले अलग हैं। तुम अपने बहनोई को दोगे, साले को दोगे, रिश्तेदार को दोगे, आसपास के मंदिर को दोगे, दोस्त को दोगे, हमें क्या पता हम कैसे जब उन तक पहुंचे? तो क्या करेंगे ये? किसा बात कर कोई पढ़ता नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, रखन दो। जब कमर में दर्द होगा डॉक्टर बेड रेस्ट बताएगा तब पढ़ेंगे, उनके बाल बच्चे पढ़ेंगे। यदि तुमने मिठाई दी और नहीं खाई तो 3 दिन में सड़कें खराब हो जाएगी, फेंकनी पड़ेगी ना, और खाली तो फिर कोई खराबी नहीं होगी ना। तो 8 घंटे ही में उसकी दो दुर्दशा होगी कि तुम उसे देख नहीं सकते। क्या क्या खाने, खाली मिठाई तो क्या होगा, समझ गया? क्या बनाएगा उसे 8 घंटे बाद? और नहीं खाई तो सड़ जाएगी। लेकिन तुमने मोक्ष मार्ग प्रकाश दिया तो पढ़ेगा तो बढ़िया, और नहीं पढ़ेगा तो बढ़िया। आज नहीं तो कल 6 महीना बाद पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, उसका बच्चा पढ़ेगा, अड़ोसी पढ़ेगा, पड़ोसी पढ़ेगा, पत्नी पढ़ेगी। क्यों? कभी ना कभी तो पढ़ेगा ना। इसलिए कहते हैं ऐसी चीजों का दंड, तो व्यर्थ के अनर्थ का दंड नहीं करना। अब मर्यादा में आ गए ना, अब व्यर्थ का पाप नहीं करना। कि अपना जिनसे प्रयोजन है वो तो कर सकते हैं ना। कहते नहीं नहीं सुनो, तुमने ये सारे जगत से कटे हो तो आत्मा के ध्यान करने के लिए कटे हो ना, तो अब सामायिक करो। शिक्षाविद बोलते हैं सामायिक नाम का शिक्षाविद। अब क्या करो? तो उपवास करो कि नहीं बनेगा साहब हमसे। तो कहा कि जो उपभोग की चीजें हैं और भोग की, उनमें मर्यादा बना दो। खाने पीने की चीजें ऐसे बोलते भोग की वस्तु में, जो एक दफे भोगने में आए उसे बोलते भोग की वस्तु में, जो बार बार भोगने में आए उसे बोलते हैं उपभोग की वस्तु। तो उसमें तुम मर्यादा ले लो कि मैं एक इतना खाऊंगा पीऊंगा और जाऊंगा तो एक गाड़ी का उपयोग करूंगा, जो भी समझ लीजिए आप मर्यादा। भोग और उपभोग में मर्यादा ले लो, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। कि अब तो ठीक है कि और भी बात है कि जो तुमने मर्यादा ली है कि मैं तार चीजें खाऊंगा, इतनी हरी सब्जी खाऊंगा, इतना ये लूंगा, ये नहीं लूंगा, ख्याल नहीं ना। अब उसमें उस हिस्से में से अतिथि आए, अतिथि माने मुनिराज सर्वश्रेष्ठ अतिथि, और बाकी अनुवृत्ति सम्यक दृष्टि श्रावक ये सब हमारे अतिथि हैं। बिना तिथि के जो आ जाए, आपको बिना सूचना दिए आ जाए, उसका नाम है अतिथि। जिनका पहले से प्रोग्राम नक्की है, क्यों? तो वो उसके लिए तो आप मान मसाला बना के रखोगे। लेकिन जो बिना सूचना के आ गए वे वास्तव में अतिथि हैं, और उनको उस अपनी जो तुमने भोग सामग्री रखी थी मर्यादित, उसमें से कुछ हिस्सा उन्हें दो। अपने लिए भोजन बनाया था महाराज मुनिराज को, उसमें से आहार दान दो। कोई आ जाए मेहमान, अचानक मित्र आ जाए, फिर अभी तुमने दो आदमी की बात, साहब दो दो की दो में 3 समा जाएंगे, बैठो तो आप होता क्या नहीं होता है क्या है? करना माने उस ऐसा नहीं कहा आप जल्दी बैठो मैं बनाता हूँ, मैं तैयारी करता हूँ। तैयारी की क्या जरूरत है भाई, जो तुमने बनाया है वही मैं खा लूंगा, होता क्या नहीं होता है? उसको बोलते अतिथि समझोगा। तो ऐसे ये 12 व्रत हैं, ये उनके अपने जीवन में आना चाहिए और अंत में समाधि मरण होना चाहिए। समाधि मान के मामले में मैंने एक बात कही थी, आज हमारे जयपुर में एक केस चल गया, किसी माँ बहन ने समाधि मान लिया था, वो श्वेतांबर बहन थी, वहां उनके संथारा बोलते हैं, पट्टी वाले संथारा बोलते हैं, तो खूब जुलूस निकलना, रोजीना डॉक्टरों को बुलाना, रोजीना अखबार में देना, फोटो छपना, रोजीना सब बहुत है, उसका प्रचार हुआ। किसी ने जाकर के अदालत में एक जनहित याचिका लगा दी कि ये आत्महत्या कर रहे हैं। अब केस चालू हो गया और सारी समाज चिंता। समाधि मरण तो हमारा बहुत बड़ा धर्म का अंग है और उस पर ही पूरे पे प्रतिबंध लग जाए तो समाज की चिंता हो गई, समाज की मीटिंगें लग गई, दिगंबरों की श्वेतांबरों की दोनों की कंबाइंड, अब हरेक में मुझे बुलाया गया और सब बातें तो हुई कि अच्छे से अच्छा वकील करो, सब करो, वो तो सब हुआ। लेकिन एक बात मैंने ये बात कही अजित प्रसाद जी, बहुत समझने लायक बात है कि ये क्यों हुआ। हमने समाधि मांग लिया इसलिए नहीं हुआ, ये जो हमने प्रचार किया अखबार वालों को, टीवी वालों को बुला बुला करके, तब ये हुआ। यदि घर में हम शांति से समाधि मरण लें तो कोई आकर हमको कहता है तुमने रोटी खाई कि नहीं खाई, कौन किसको पूछता है, मैं आपसे पूछता हूं तुमने क्या खाया और क्या नहीं लिया। तो इसको बोलते हैं महिमा मंडन। ये महिमा में सती प्रथा का भी विरोध क्यों, महिमा मंडन का विरोध ज्यादा होता है, ख्याल में है ना। तो मैंने कहा कि एक प्रतिज्ञा हम लोग करें कि आज से धर्म के काम का जबरदस्ती नकली महिमा मंडन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे दो फायदे होंगे, एक तो इससे बच जाएंगे हम और दूसरा फायदा ये होगा कि महिमा मंडन के लोग में दर्शन के उपवास लोग कर सकते हैं, तो समाधि में ले लेते, समाधि का अर्थ नहीं समझते हैं और ले लेते हैं, ख्याल में है ना आपके में ना। तो ये नकली होता है वो कम से कम रुक जाएगा, जो महिमा मंडन के कारण होता है। तो समाधि मैन तो हमारी, मैंने कहा हर सभा में कि मैं घोषणा कर रहा हूं कि मैं समाधि मैन। विद्यानंद जी ने समाधि घोषित कर दी कि नहीं कर दी, क्यों? समाधि मैन तो जैन धर्म का अंग है, तो इसमें लिखा है देखो अंतिम पंक्ति में पढ़ो, तो बारह वृत्त के अति चार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार तसु दोष न सावे, यो श्रावक प्रतिपाल स्वर्ग सोलह उपजावे, तहां ते ते नर जन्म पाए मुनि हुए सिविदाय। मुनि हुए बिना किसी को आज तक मोक्ष नहीं हुआ है ना कभी होगा। ये दिगंबर धर्म की, मूल धर्म की, जैन धर्म की ये पक्की और सच्ची मान्यता है, ख्याल में है ना। कोई ये समझे कि हम मुनि हुए बिना ही मोक्ष हो जाएंगे तो ये कभी होने वाला नहीं है। अब देखिए पांचवी ढाल है, ये पांचवी ढाल में क्या है कि श्रावक अब मुनि होने जाएगा तो उसके बीच में वो बारह भावनाओं का चिंतन करता है। वैसे तो बारह भावना ग्रस्त भी चिंतन करते हैं, मुनिराज भी करते हैं, दीक्षा लेने के बाद भी करते हैं, पहले भी करते हैं, लेकिन एक खास है। आप जितने भी पुराण पढ़ना, उन पुराणों में जब भी कोई दीक्षा लेते हैं तो उसके पहले बारह भावना का चिंतन करते हैं। अगर पुराण पढ़ने की फुर्सत नहीं हुई तो मत पढ़ना, पंच कल्याणक देखना तो जाते ही हो ना, जाते हो तो वहां भी जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो उसके पहले वे बारह भावनाओं का चिंतन करते हैं। आपने देखा वो ध्यान से, तो दीक्षा कल्याणक के दिन। इसलिए बारह भावना जितने पुराण होंगे सब पुराणों में एक बारह भावना मिल जाएगी। ये दौलत राम जी की बारह भावना है, भूदरदास जी की बारह भावना भी अपन ने पढ़ी है। तो देखो ये बारह भावना को इसकी शुरू से लेकर हम देखते जाएंगे तो आठ आठ सात आठ छंद ऐसे आएंगे कि जो आपको वैराग्य दिलाते हैं। क्यों? देखो पढ़ो, मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी भव भोगन ते वैराग्य। देखो मार्मिक बात क्या कही, भाग्यवान इस जगत में कौन है? क्यों? ये पैसे वाले के नेता के बड़े बड़े ऑफिसर, सच बोलो छाती पे हाथ रख करके, हम किन्हें भाग्यवान मानते हैं? ये कहते हैं मैं मुनिराज ही बड़े भाग्यवान हैं, बाकी तो सब अभागे हैं। वैराग्य उपावन माई, वैराग्य की उत्पत्ति में वे 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। इसमें एक सिद्धांत समझ लेना कि जिस चिंतन से वैराग्य उत्पन्न हो उस चिंतन का नाम 12 भावना है। जिस चिंतन से द्वेष उत्पन्न हो उसका नाम 12 भावना नहीं, ये नक्की हो गई। अब कुंदकुंदाचार्य ने 12 भावनाएं लिखी है, उसका नाम है द्वादशानुपेक्षा किताब का नाम। तो उसमें ये लिखा है कि ये जो 12 भावनाएं हैं ये आनंद की जननी हैं। तो एक तो वैराग्य की जननी हो गई और एक आनंद की जननी हो गई। तो दो शर्तें लग गई कि जिस प्रकार के चिंतन से वैराग्य हो और सुख पैदा हो, दुख नहीं हो, आकुलता नहीं हो, घबराहट नहीं हो, उसका नाम 12 भावना है। अब देखिए मैं आपको एक दौलत राम जी की है और भूदरदास जी की, वो भी अपन को सबको याद है, दोनों की तुलना करता हूं जरा। राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, दलबल देवी देवता मात पिता परिवार, और मरती बिरिया जीव को कोई न राखन। तो यह मौत मौत की चर्चा आई, क्या मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, और मरते समय कोई नहीं बचा पाएगा, क्यों मरना पड़ेगा, ये अनित भावना, और कोई नहीं बचा पाएगा ये असरण भावना। अब ये पढ़ते पढ़ते हमारे दिल में घबराहट पैदा होती है, भय लगता है, क्यों हाय राम मरना पड़ेगा, हमें भी मरना पड़ेगा और कोई नहीं बचा पाएगा, समझिए ना। तो समझ लेना कि ये 12 भावना का चिंतन तुमने नहीं किया, कि इसमें लिखा है ना राजा राणा छत्रपति और हाथों के असवार सब मर गए, क्यों और मरते समय कोई नहीं बचा पाएगा तो घबरा नहीं तो क्या करें, हंसने लग जाए, खुशी मनाए कि हाँ मनाओ, तो नहीं तो वो 12 भावना नहीं है, क्योंकि 12 भावना आनंद की जननी होती है, वैराग्य की जननी होती है। वो शर्त रखो, यदि वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ और आनंद नहीं आया तो समझ लेना कि ये 12 भावना का चिंतन नहीं है। गलती किसकी है, लिखने वाले कवि की या हमारी, सुनो उसमें लिखा है ना मरना सबको एक दिन, क्या अर्थ है इसका, सब हम एक दिन मर जाएंगे, माँ बाप बेटे बच्चे एक दिन, ये अर्थ है क्या, एक दिन अर्थ नहीं है उसका, एक ना एक दिन माने कभी ना कभी, सही अर्थ नहीं समझेंगे तो चक्कर हो जाएगा। और कब कि अपनी अपनी बार, माने सबका नंबर लगा है, माने डेट फिक्स है, जब डेट फिक्स है तो उसके पहले मरोगे भी नहीं, क्यों, तो ये जीवन की गारंटी है कि मौत की बात है। अब तुम्हें जीवन की गारंटी दिखेगी तो आनंद आएगा, मौत दिखेगी तो घबराहट होगी। फिर लिखा ना कोई ना राखन हार, मरती बिनिया जीव को कोई नहीं बचा पाएगा, लेकिन कब, जब मरने का काल आएगा तब, माने वो काल नक्की है, उसका मतलब उसके पहले कोई मार भी नहीं पाएगा और आएगा तो बचा नहीं सकता। तो आप क्या चाहते हो, वस्तु का स्वरूप तो यही है ना, जैसे कि एक गेहूं पैदा होता है तो वो 100 दिन में पक करके झड़ जाता है, क्यों जी, वो 1000 वर्ष तक खड़ा रहे खेत में तो क्या होगा, तो अगले साल की फसल कैसे हो जाएगी, क्यों। तो ऐसे ही आप मरो ही नहीं कभी तो अगले बाल बच्चे कहां आएंगे, वे कहां रहेंगे, तो आपको समय पर छोड़ के जाना चाहिए कि नहीं। अब हम तो ऐसे ऐसा काम कर रहे कि जो जिंदा है उन्हें मरने नहीं दे रहे और जो पैदा होना चाहते उन्हें पैदा नहीं होने दे रहे। भाई आखिर जब जनसंख्या पर कंट्रोल करना है तो क्या करोगे, यहां मृत्यु पर कंट्रोल कर रहे हैं और वहां जन्म पर कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा, एक दिन सब बुढ़े ही बुढ़े हो दिखेंगे इस देश में, बच्चे तो दिखेंगे ही नहीं और जवान तो आएंगे कहां से, क्या होगा इस देश का। तो समय पर जन्मे हैं और समय पर मरना इस परम सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए सत्य दिल से हैं, लेकिन और उस समय आने के पहले नहीं मरेंगे ये गारंटी है, तो फिर घबराहट नहीं होगी। लेकिन इसमें अनित्यता माने ये चीज कायम हमेशा रहेगी ऐसी चीज नहीं है। अब कहोगे कायम नहीं रहेगी तो इसमें से आनंद कैसे आएगा? आनंद आएगा, हम बीमार हैं, बहुत तकलीफ है, यदि वो अनित्य नहीं हो तकलीफ तो कभी स्वस्थ नहीं हो सकेंगे। बोलो, हम संसार में है ना, अभी दुखी है ना, यदि ये अनित्यता नहीं होता संसार तो कोई जीव कभी मोक्ष जा ही नहीं पाता। तो ये अनित्य होना ये हमारे हित में है कि हमारे विरुद्ध है? जब हम दुखी हैं तारों के त्यों के जीव, तो ये चीज नष्ट हो जाएगी और मोक्ष हमें प्राप्त हो सकता है, तो ये नहीं होता और सब स्थिर होता तो हम अनंत काल तक दुखी ही रहते। भाई साहब निबोध से निकल के यहां भी नहीं आ पाते, ये बदलने के स्वभाव के कारण आप निबोध से निकल के यहां तक आए हो। तो बदलने का स्वभाव हमारे विरुद्ध है, यानी इन 12 भावनाओं में से आनंद निकलना चाहिए और वैराग्य निकाल के मैं आपको बता रहा हूं। इसमें वही बातें लिखी कि जोबन ग्रह गोधन नारी ये सारी चीज संयोग हैं, ये बिखर जाने वाले हैं, ये कभी भी स्थिर नहीं रहेंगे। देवता आ जाएं इंद्र आ जाएं तो कोई किसी को बचा नहीं सकेगा। तो बचा नहीं सकेगा ये अच्छी बात है, क्योंकि बचा नहीं सकेगा तो मार भी नहीं सकेगा, जो मार सकेगा तो बचा सकेगा, बचा सकेगा तो मार नहीं सकेगा। तो हमारे हित की बात है कि नहीं है? ये आनंद आना चाहिए। वो कहते हैं ये सारे संसार में तीन चीजें ध्यान से देखना, अनित्य भावना माने ये जो संयोग हैं ये गारंटी से बदलेंगे। तो अभी हम सबकी स्थिति खराब है तो ये बात हमारे हित में है क्या? हित में बदलें, हित में। अब जब ये बदलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत मुझे बदलने से रोक नहीं सकेगी। इसमें क्या खराबी है? क्यों? यदि कोई आदमी रोक देता, हम गरीब हैं दुखी हैं, अब वो हमको दुख नहीं मिटने देता, क्यों? तो ये दूसरी भावना हो गई। क्या संयोग नष्ट होंगे अनित भावना, और नष्ट होते समय कोई नहीं रोक पाएगा, पहले नहीं रोक पाएगा, ये बात कहां है? तब कहते थे माथा मत करो, हमारा दिमाग खराब मत करो तुम ऐसी चर्चा कर करके कि सब चला जाएगा सब चला जाएगा। अरे जितने दिन है उतने दिन तो सुख शांति से रह लेने दो, मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, मौत की याद दिला दिला कर हमारी जिंदगी खराब कर रहे क्यों? तब वो कहते हैं कबहू न सुख संसार में सब जग देखो जान। इसमें लिखा ना चौगत दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या मैं सुख नहीं लगा रहा। क्या कि तुम कहते हमें भोग लेने दो, क्या जब तक है क्या भोगने को? दुख ही दुख तो है। चले देखो ये दुख है, सुनो ये दुख एक दिन जाएंगे, अपना आनंद की बात है ना। ये दुख जाते वक्त कोई इतने रोक नहीं सकेगा, आनंद की बात है ना। और इस संसार में जो भी है वो दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं, इसलिए इसके जाने ही अच्छा है। बोलो तो कहां इसमें दुख की बात आई? फिर वो कहते हैं कि नहीं 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 भैया, जो भी दुख आया होगा तो हम सब मिल बांट के भोग लेंगे। बोलते ना पांच पंच मिल कीजिए काजा बिगड़े सुधरे आए ना लाजा, मिल बांट के भोग लेंगे। कहते भैया ये धोखे में मत रहना, मिल बांट के भोगने की व्यवस्था जैन धर्म में नहीं है। आप अकेला अवतर है और मरे अकेला हुए, और यो कहूं या जीव को साथी सगा, है ना। इसमें भी यही लिखा है, देखो शुभ अशुभ कर्म फल देते भोगे जिया एक ही तेते, सुदारा हुए ना सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। जरा इसमें समझना मार्मिक बात है, क्यों जी मेरे पेट में भयंकर दर्द हुआ तो मुझको ही भोगना पड़ेगा कि थोड़ा पत्नी बांट सकती है, बता बाप बेटा बांट सकता है? नहीं बांट सकता है। तो दो बातें अलग अलग हैं कि बांट नहीं सकता है कि बांटता नहीं है, यदि बांटता नहीं है ये सोचेंगे तो द्वेष पैदा होगा, और बांट नहीं सकता है तो वितरागता पैदा होगी। हम क्या कहने लगे, बांटता नहीं है। अब देखिए दो आदमी है, देखिए भयंकर पेट में दर्द हुआ, डॉक्टरों को बुलाया, ये आया, उन्होंने वो इंजेक्शन लगाया मार्फिया का, लेकिन फिर भी पेट का दर्द मिटा नहीं, मरीज तड़फता ही रहा। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो भैया, दो इंजेक्शन लगा चुका, अब नहीं लगा सकता हूं, अब लगाऊंगा तो मरीज मर ही जाएगा। अब तो ये सुबह अस्पताल खुलेगा तब जाकर के इसका ऑपरेशन होगा, और तब पता पड़ेगा क्या है कैसा क्या है, तब तक कुछ नहीं हो सकता, इसको तकलीफ भी भोगनी पड़ेगी। अब डॉक्टर चला गया, अब घर वाले बैठे सब सोचना जरा दो। एक आदमी है वो कहता है कि घर वालों को नींद आ रही है, तो पेट में दर्द घर वालों को थोड़ी हो रहा है, उसे हो रहा है, बुध नाराज मेहनत करके आए हैं तो नींद आएगी। तो वो कहता तुम लोग फुसर फुसर करके सो रहे हो और मैं यहां तड़प के मर रहा हूं, क्या हुआ क्यों, तो और दुख होगा क्योंकि वो बांट तो सकते नहीं, उसके पेट का दर्द तो ले नहीं सकते, हाँ रो रो करके अपने पेट में दर्द नया पैदा कर सकते हैं। क्यों, यदि समझदार आदमी होगा तो ये कहेगा भैया तुम जाओ सो, अब तुमने जितनी कोशिश कर ली अब तो ये मेरे को ही भोगना है। कि नहीं नहीं हम कैसे सो सकते हैं, आप तड़प रहे हो, कि भैया नहीं सोओगे तो सुबह अस्पताल कौन ले जाएगा। तो तुम भी बीमार हो जाओगे, ख्याल रहे ना, इसलिए तुम जाके सो, समझदारी का तो ये काम है ना, क्योंकि कोई मेरे दुख को बांट नहीं सकता। बोलो, दोनों के चिंतन में कितना फर्क है, पहला चिंतन वो बारह भावना का नहीं है, दूसरा चिंतन वो बारह भावना का है। क्यों, कि मेरा सुख दुख मुझको ही भोगना पड़ेगा, और मोक्ष में भी मैं अकेले ही जाऊंगा। ले दौलत प्राण प्रिया को हम मुक्ति ना जाने पाएंगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यही खड़े। ये सारे संयोग अपन बोलते हैं ना, स्त्री पुत्र मकान के सुद्धारा हुए ना सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, तो ऐसा सोचोगे तो द्वेष होगा। अरे भैया ये हमारा चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते, हमारे शुभ अशुभ कर्म का उदय आएगा, वो हमको ही भोगना पड़ेगा। ये चिंतन, ये बारह भावना का चिंतन है। फिर वो कहता ठीक है, निबट गए स्त्री पुत्र कुटुंब सब भी निबट गए, इनसे कुछ लेना देना नहीं रहा। अब अपना शरीर तो रह गया ना, अब अपना शरीर का अपने ही रह गए ना, तो अकेले क्यों, वो अकेले का मतलब क्या समझता है कि मैं पंडित हुकुमचंद अकेला, कोई स्त्री पुत्र मेरा साथी नहीं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि ये तो बहुत पिंड है, हजारों चीजों का साथ है, अकेला का है ये शरीर, तेरा साथ है ना, अकेला का है। कहने लगे शरीर तो मेरा ही है, आखिर से संभाल के रखना ही पड़ेगा। तो असुचि भावना ने जाकर के कहा कि भैया पले रुधिर राधे मल थैली की कस बसा दी तें मैली, नवे द्वार बहे घिने कारी, अस देह करे के मैं आई। अब कह जरा विचार तो कर ले, तू इसे अपनी अपनी कहता है, पहले सोच तो ले जे कितना गंदा है। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय। मैंने बोला ना इतना बढ़िया अभी हलवा खाया था ना, तो आठ घंटे में उसकी क्या दुर्दशा होती है, क्यों, इस शरीर के संयोग में आने से दुर्दशा होती है। समझना तेरा शरीर कैसा है, ये पानी है ना, पानी एक हर चीज को पवित्र करता है, कपड़ा गंदा हो जाए तो धो लो तो वो भी साफ हो जाता है ना, मकान को ये पानी से धोने से सब चीज को अपन पवित्र मान लेते कि नहीं मान लेते हैं, नहाने तो अपन पवित्र हो गए। लेकिन ये अपना मोह ऐसा है कि इसे पानी से धोएं तो मोह तो पवित्र नहीं होता है, पानी झूठा हो जाता है, पानी अपवित्र हो जाता है। कि सौ दफे कुल्ला करें और कोलगेट के सुरक्षा चक्के से इसे परम पवित्र बना लें और फिर भी मुंह में पानी दें तो वो पानी झूठा होता है कि मुंह पवित्र हो जाता है। देखो मलिन वस्तु हर लेत सब जल स्वभाव मलचीन, पानी का स्वभाव सारी मलिन वस्तुओं को हर लेना है। लेकिन ये हमारा मोह जिसे हम परम पवित्र मानते हैं, ये ऐसा है कि उस पानी को भी अपवित्र कर देता है। इसके संयोग में अचपेरा घी से बनी हुई हाथ कुआं की चक्की का आटा, क्या नहीं, कुएं का पानी से लाकर के बढ़िया वो बनाया खाना परम शुद्ध है ना वो तो। अरे वो इसके पास में जाके उसे छुआ और फिर उसे कोई छूने को तैयार नहीं। तो इस देह के लिए तुम्हें, इस देह के संयोग में जो वस्तु पलवर आएगी वह भी मलिन मल मूत्र में दुर्गंधमय हो जाएगी। लेकिन एक चीज ऐसी है कि इसके संयोग में लाखों करोड़ों अरबों वर्ष तक रही और वो गंदी नहीं हुई। किंतु रहे इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह गे है सिद्धे है वह धे भी वह कल है ना। तो इस छह भावनाओं में संयोग मन स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया देशा नगर देश गांव और शरीर, ये हमारे नहीं है। इनसे राग करने से कोई फायदा नहीं है, द्वेष करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये हमसे बिल्कुल जुदे हैं। हमारा और इनके बीच में अत्यंत भाव की वज्र की दीवार खड़ी है, इसलिए इनसे राग द्वेष करने से क्या फायदा। अब उन्होंने वहां से अपने उपयोग को हटाया तो ये बैराग भावना हुई ना, वहां से बैराग दिलाकर यहां लाए। अब अंदर आए, अंदर कहां, अपने आत्मा में जो मूल राग द्वेष के भाव हैं, ये तो आत्मा में ही पैदा हुए ना, इन्हें आश्रव कहते हैं। तो असुचि भावना हो गई ना, अनित्य असरण। अनित्य भावना में क्या कि सब कुछ क्षणभंगुर है। असरण में क्या कि समय आएगा तो कोई नहीं बचा पाएगा। संसार में क्या कि जो कुछ है वो सब दुख स्वरूप है। एकत्व में क्या कि सुख दुख सब अकेले ही भोगना पड़ेंगे और मोक्ष में भी बेटा अकेले जाओगे। ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाने पाओगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े। एक कोई अपना नहीं है, ये अन्यत्व भावना। और जिसे तुम अपना समझ रहे हो अत्यंत नजदीक का, वो कितना मैला कुचैला गंदा पदार्थ है, एक दफे तुम विचार तो करो। तो इनसे बैराग हुआ ना, इन छह चीजों से। अब वो कहते हैं कि अंदर में जो मोह राग द्वेष के भाव हैं, वे तो अपने में ही पैदा हुए हैं। तो कहते वे भी आश्रव भाव हैं, वे तेरे को दुख देने वाले हैं। आता ना, आश्रव दुख कारे घनेरे बुद्धि बनते तेने नेरे रेरे, के वे आश्रव भाव भी छोड़ने लायक हैं, चाहे पुण्य आश्रव हो चाहे पाप आश्रव हो। ये आश्रव भावना हुई। इस तरह इन बारह भावनाओं में आदमी को राग से बैरागी की तरफ ले जा रहे। जो जो चीजें गृहस्थी में हैं, सुनना, बेवे छोड़ने कर मुनि होते हैं ना, तो इसलिए उन सब चीजों की क्या दुर्दशा है। तुम इसको छोड़ने के लिए अपने चित्त को तैयार कर, घबरा मत कि मैं कुछ खो रहा हूं। तुम्हें महाविकार से गंदगी से बच रहा है समझना है ना। ये जो अभी इसने भावना भाई थी ना, संबर भावना बताई थी, निजे पुण्य पाप नहीं कीना। मैं एक बताना चाहता हूं जरूरत राम जी की विशेषता, एक भूदरदास जी की भावना बोलो है ना, कौन संबर भावना है आप किसी को। सतगुरु दे जगाए मोह नीले जवे उप समय, तबे कछु बने उपाय करम चोर आवत रुके। अब ये भावना है, ये कितनी पराधीनता भरी है कि भाई मैं क्या करूं, सदगुरु जगा दे रहे हैं तो मैं कुछ करूं। जैसे कहते हैं भैया सुबह हमारे साथ घूमने चलोगे आदिश जी, कि पंडित जी नींद नहीं खुलती है, कोई जगह देगा आप जगा दोगे तो चलूंगा। ठीक है मैं जगाऊंगा, फिर तो चलोगे, नींद खुल जाएगी तो देखूंगा। अरे खुल जाएगी फिर जरूर सोचूंगा, हो गया कल्याण। देखो सतगुरु दे जगाए और मोह नींद जब उपशमे, और तब कछु बने उपाय करूंगा नहीं और तब करम रूप चोर आने से रुके। ये कितनी पुरुषार्थहीनता की बात है, घबराना नहीं। अब इसमें देखो आप उसी बात, जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, जिन्होंने पुण्य पाप नहीं किया, दूसरे के भरोसे नहीं है, आत्मा के अनुभव में चित्त को लगाया, तिन ही विधि आवत रोके। देखो वहां था कर्म रुके और यहां है रोके, फर्क हुआ ना। कर्म चोर आवत रुके अखिल और यहां तिन ही विधि आवत रोके, कितना पुरुषार्थ जागृत हो रहा है, ये भावना कितनी पुरुषार्थ प्रेरक है। और वो कैसी है, जैसे दीनता की रोने के लिए, मैं क्या कर सकूं, मैं कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, है ना। तब ही लगा ना, तिन ही विधि आवत रोके संबर लई सुख अवत हो गया। फिर देखो, निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तब कर जो कर्म खिपावे सो ही शिव सुख दर्शावे। देखो एक क्या होता है कि निर्जरा बोलते हैं ना कर्मों का झड़ना, कर्म तो अनादि से झड़ रहे हैं, क्योंकि जो कर्म बंधता है उदय में आता है तो फल देकर खिल जाता है, झड़ जाता है। तो निर्जरा तो हुई नहीं, यदि कर्मों के झड़ने का नाम निर्जरा है तो निर्जरा तो अनादि की हो रही। अनादि से कर्म में आत्मा फंसा है, ये बात सही है, लेकिन वो कर्म देही के देही नहीं है, वे बदलते रहते हैं। 24 घंटे चोर के पीछे पुलिस लगी है, ये सही बात है, लेकिन 8-8 घंटे में ड्यूटी बदलती रहती है पुलिस वाले की, तो कर्मों की ड्यूटी बदलती रही है, तो अनादि का कोई कर्म हमारे साथ नहीं है, समझे ना। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसे कर्म जो झड़ते हैं उनसे हमारा कोई काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जितने झड़ते हैं उतने बन जाते हैं। ये पुलिस वाला जाएगा तो दूसरे पुलिस वाले को चार्ज समझा के जाएगा, क्यों, हमारी जेल इसे छूटने वाली नहीं है। तो कब छूटे जेल, कि जब ये जाए और दूसरा पुलिस वाला आए नहीं और ये किसी को चार्ज दे नहीं। तो ऐसे कर्म झड़े कि उसके साथ नए नहीं बने, तो वे कब होंगे, कि जब हम तब करेंगे, तब करेंगे, मन अनुसनादि की बात नहीं है, इच्छा निरोधा, जब हम भीतराग भाव में अंदर में आत्मा के ध्यान में जाएंगे, ध्यान सबसे बड़ा तप है, तब वो आते हुए कर्म रुकेंगे और तब वो कर्म झड़ेंगे तो हमारा काम होगा। ख्याल में है ना, तब कर जो कर्म खिलाफ है सो ही शिव सुख दरबार दर्शा है। आज का समय हो गया, ये तीन भावनाएं रह गई हितार, इनकी चर्चा अपन कल करेंगे।